जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पंडरीनाथ राधा पंडरीनाथ राधे जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा जय प्रभु पादा निताई गौर हरिबोल 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 निताई गौर प्रेमानंदे श्री विठ्ठल रखुमाई भगवान की श्री पंडरीनाथ धाम की चंद्रभागा नदी की श्री पुंडलिक भक्त महाराज की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज के इस 21 जून 2018 पंडरपुर मेडिकल कैंप के प्रातः भागवतम में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो बार बार और लगातार पंडरपुर के महात्म्य का चिंतन यहाँ पर होते रहना चाहिए। इसलिए ये प्रयोजन है कि हमारा कैंप केवल समाज सेवा, शरीर सेवा न रहे, लेकिन शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का, तीनों की पुष्टि, तीनों का कल्याण, तीनों का उद्धार इस काम से होना चाहिए। हर एक कार्य जो होता है वो चेतना के ऊपर उसका दर्जा बदल जाता है। अगर चेतना सही जगह पर है तो हर एक सामान्य कार्य भी दिव्य कार्य बन जाता है, और अगर चेतना गलत स्थिति पर है तो वो दिव्य कार्य भी सामान्य कार्य बन जाता है। तो हमारे कार्य को दिव्य कैसे बनाना है ये हमारी चेतना पर निर्भर है। इसलिए हमारे कैंप में हमेशा कीर्तन होता है, आरती होती है, पूजा होती है, यज्ञ होता है, प्रसाद वितरण होता है, भगवान की चर्चा होती है, भागवतम प्रवचन होता है, ताकि सारे कार्यों को दिव्यता प्राप्त हो, सबकी चेतना उच्च स्तर पर जाए, और सबकी चेतना के उच्च स्तर पर जाने से हमारी सारी सेविया भगवान के चरणों में रुजू हो जाए। इसलिए ये प्रयोजन है। तो पंडरपुर के प्राचीन इतिहास में एक दिंडीराव नाम का राक्षस था। क्या नाम था उसका? दिंडीराव। वो इतना भयंकर था कि उसने स्वर्ग लोक तक हाहाकार मचा दिया था। तो फिर आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सब देवता बनकर तो मजा करने का कोशिश करते हैं, लेकिन देवता लोगों को भी मजा नहीं मिलता है। सब जगह पर राक्षस लोग आते हैं। जहां तक भौतिक जगत है केवल सुख का आभास है, सोचते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, वहां पर इंद्र के पास रहेंगे तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन इंद्र बेचारे खुद परेशान रहते हैं। तो दिंडीराव राक्षस ने इतना हाहाकार मचा दिया कि इंद्र देवताओं का राजा परेशान हो गया और विष्णु के पास गया। आज तक कितनी बार गए हो इंद्र भगवान विष्णु के पास? कोई गिनती है क्या उसकी? कोई गिनती नहीं है। जितनी बार आतंक हुआ उतनी बार गए हैं। इतना मतलब आतंक चलते रहता है भौतिक दुनिया में। तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं आकर उसका वध करूंगा, मतलब मैं व्यवस्था करूंगा उसकी। तो फिर यथावकाश उस समय पृथ्वी पर इंद्र अपने स्वर्गलोक में, पृथ्वी पर श्री चंद्र नाम के राजा थे, और वो राजा ने 1000 साल तपस्या किया, बहुत घनघोर तपस्या किया। उसके बाद शंकर भगवान ने उसको दर्शन दिया। शंकर भगवान के नाम ही शिव है, यानी परम पवित्र। उनके दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हो गए वो। उन्होंने कहा वर मांगो। तो श्री चंद्र राजा ने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र होगा तो मेरा जीवन धन्य होगा। तो फिर यथावकाश उन्हें पुत्र हुआ। शिवजी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के रूप में शिवजी ने उनके गर्भ में जन्म लिया, और बहुत तेज से भरा हुआ राजपुत्र था ये, बहुत शक्तिशाली, सद्गुण संपन्न वीर, ऐसे सुंदर युवा पुरुष था। 20 वर्ष की आयु में ये जब जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए, तब इसका दिंडीराव राक्षस से मुलाकात हुआ, और दिंडीराव राक्षस की मुलाकात होते ही उन्होंने उनको हमारे जंगल में प्रवेश किया इस भाव से आह्वान दिया, युद्ध करो। तो ये कहते हैं कि बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ। ऐसा घनघोर युद्ध हुआ कि सारे देवता आकाश में जमा हो गए। इतने शस्त्रों का, अस्त्रों का प्रहार हुआ, बहुत दिव्य अस्त्रों का प्रहार उपयोग किया गया, और आखिर में अपने लोह दंड नाम की गधा से मल्लिकार्जुन ने दिंडीराव राक्षस के शीश पर घनघोर प्रहार किया, और वो मृत्यु को प्राप्त होने जैसा हो गया, लेकिन मरा नहीं। और विशेष बात यह है कि जैसे ही उसके सर पर लोह दंड नाम के गदा का प्रहार हुआ, उसके मुंह से हरी 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 बोलिए ऐसे उच्चार हुआ। ये बड़ी विशेष बात है। ऐसा क्यों होता है? रावण ने जीवन भर राम का द्वेष किया, लेकिन जब उसके नाभि के कुपी में, अमृत कुपी में जब बाण पड़ा, तब उसके मुंह से क्या निकला? जय श्री राम। ये बड़ी रहस्य की बात है, क्योंकि पृथ्वी पर जब भगवान अवतार लेना चाहते हैं, कई कारण है उसके, उसमें एक कारण उसका ऐसा है कि उनको गोलोक वृंदावन में उनके वीर रस का तृप्ति नहीं होती है। सब रस है उसके अंदर और सब रसों की तृप्ति वहां होती है, लेकिन वीर रस जो है ना वो रियल में वहां पर तृप्ति नहीं होती। सब लोग ऐसे फ्रेंडशिप में कुश्ती खेलते हैं, उसमें कोई ऐसा खूंखार सनसनीखेज ऐसा कोई भयंकर काम नहीं होता है, तो उनको वो वीर रस का वास्तव में अनुभव करने की इच्छा होती है, तो अपने ही भक्तों को राक्षस बन के बनाकर भेज देते हैं और फिर आते हैं और युद्ध करते हैं, तो वो उनके भक्ति होते हैं, वो जीवन भर भगवान की इच्छा के अनुसार राक्षस का रोल करते हैं, और फिर जब भी उनका अंतिम समय आता है, उनकी अंतिम परीक्षा होने का समय आता है ना, जो मृत्यु का समय, तभी उनके मुंह में क्या निकलता है, जो उनके हृदय में है वो निकलता है। तो वो जय विजय थे रावण और कुंभकर्ण, जब उनका मृत्यु हो गया तो जय श्री राम, सीधे भगवत धाम चले गए, दोबारा आए ऑफकोर्स उसके बाद में एक बार। तो इसलिए ये दिंडीराव भगवान का भक्त था एक्चुअली, लेकिन राक्षस के रूप में अपना रोल अदा कर रहा था भगवान की लीला में। तो ये दिंडीराव जब मृत्यु शैया में आया, मरा नहीं अब तक, भगवान का नाम लिया उसने, तो मल्लिकार्जुन ने उनको गदा प्रहार किया था, तो उसके समय विष्णु अवतरित हुए वहां पर और बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में भगवान का नाम लेता है भगवान उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने ढेर सारे वरदान मांगे। उन्होंने कहा जहां पर मैं पड़ा हूं उस वन का नाम दिंडीराव वन हो जाए, मेरे नाम से हो जाए। जिस जगह पर मुझको गदा का प्रहार किया गया, लोह दंड गदा का, उस जगह को लोह दंड तीर्थ नाम दिया जाए, मतलब वही जगह है, उसी जगह पर रहता था वो जंगल में, उसी का नाम दिंडीराव वन, जहां पर दंडा गदा का प्रहार हुआ उसका नाम लोह दंड गदा, लोह दंड तीर्थ। और कहा कि इस रूम में, इस जगह पर जो भी आएगा उसके सारे पापों का नाश होना चाहिए, ऐसे ही वरदान मांगे उन्होंने। और मल्लिकार्जुन जो, जिन्होंने मुझे गदा प्रहार किया है, वो इस क्षेत्र के नायक बन जाए, यानी कि क्षेत्रपाल। और जैसे ही लोग मल्लिकार्जुन का दर्शन करेंगे तो सब पापों से नष्ट हो जाएंगे, ऐसे कई सारे उन्होंने वरदान मांगे। तो यही है दिंडीराव वन जिसमें आप सब लोग बैठे हुए हैं, यही पंडरपुर है, इसी का नाम पंडरपुर है। और ये दिंडीराव की लीला जो है वो बहुत प्राचीन काल में हुई थी, तब विट्ठल भगवान पुंडलिक यहाँ पर कोई नहीं थे। तो ये इस तरह से राक्षस के होने से, अस्तित्व का वास्तव होने से, बहुत भयंकर जगह थी ना पहले, लेकिन जैसे ही हरि का नाम लेकर वरदान प्राप्त करके उसकी मृत्यु हो गई तो ये पवित्र तपस्थली बन गई, तीर्थस्थान बन गया ये। और इसीलिए रुक्मिणी देवी यहाँ पर तपस्या करने के लिए आई थी, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। क्यों आई थी? वो भी भगवान की लीला है, भगवान अपने लीलाओं को पूर्ण करने के लिए जो चमत्कारिक कार्य करते हैं। तो रुक्मिणी का भगवान से विवाह हुआ, आप जानते हैं, द्वारका में। भगवान वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, और वहां जाकर उन्होंने 16108 विवाह रचाए, रुक्मिणी का विवाह हुआ। तो रुक्मिणी के लिए और बाकी 16107 रानियों के लिए भगवान ने 16108 महल बनाए, सबको संतुष्ट किया, सबको दास दासियां, धन धान्य भंडार, अलंकार, सब प्रकार का सुख दिया, 10 पुत्र दिए, 1 कन्या दिया, उनका ही कुछ 1,00,000 के ऊपर खुद का परिवार है। तो एक दिन, आप पुराणों में पढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा, एक दिन राधा रानी द्वारका में आई गोपियों के लेकर, इसलिए वहां पर गोपी तालाब है, बहुत व्याकुल थी, तो उनको उद्धव जी लेकर आए द्वारका में। तो राधा रानी फिर रुक्मिणी के महल में श्री कृष्ण को मिलने गई, तब रुक्मिणी कहीं बाहर चली गई थी। जब वो रोड के आई तो देखा कि एकांत में राधा रानी और कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, तो बड़ा क्रोध आया उनको, सीधे चली गई वहां से, निकल गई और सीधे दिंडीराव वन में आके तपस्या करने लगी। तो भगवान भी बड़े व्याकुल हो गए, तो रुक्मिणी को ढूंढने के लिए रथ लेकर निकली द्वारका से, और ढूंढ ढूंढ के फिर रुक्मिणी को ढूंढा उन्होंने। दिंडिरव वन में तपस्या कर रही थी, बहुत कोशिश किया उनको मनाने का लेकिन वो मानी नहीं। तो फिर वहां से वो आगे आए हैं पुंडलिक को मिलने के लिए। ये एक कथा है। और दूसरी कथा ऐसी है कि जब भी भगवान ने धेनुकासुर को, बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, उसके बाद में भगवान पंडरपुर में आए। तो एक एक लीला में द्वारकाधीश के रूप में आए हैं, एक लीला में गोपाल के रूप में आए हैं, गोपाल कृष्ण के रूप में। अभी ये जो कथा है दिंडिरव वन की, ये शंकर भगवान ने पार्वती को शिव पुराण में सुनाई है, फिर ये नारद मुनि ने अनंत शेष को सुनाई है, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई है। तो अभी हम, क्योंकि यहां पर अभी इसी कथा को जोड़कर भगवान द्वारका से आए हैं, भगवान वृंदावन से भी आए हैं, तो पुंडलिक की कथा सुनना बहुत जरूरी है। पुंडलिक की कथा इस जगह पर बैठ के सुनना, इससे बड़ा पवित्र कार्य कोई नहीं है। यहां आने पर इस भूमि में बैठकर पुंडलिक की कथा सुनना, यह बहुत परम पवित्र कार्य है, परम पावन कार्य है। सब लोग ध्यान से सुनना, किसी को नींद आ रही है तो जागृत हो जाना, क्योंकि ये धाम का स्थल महात्म्य है, विशेष सर्वोत्तम स्थल महात्म्य है। तो जानुदेव और मुक्ताबाई नाम के बहुत ही सुंदर गृहस्थ जोड़ी थे, भगवान के परम भक्त थे, विट्ठल के वैष्णव थे, और उनको पुत्र हुआ पुंडलिक नाम का। अभी हम लोग ने पुंडलिक के बारे में कितना महात्म्य सुना है, लेकिन पुंडलिक बचपन में बहुत ही एक प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के थे, सबकी निंदा करना, सबको हिंसा करना, दुख देना, कष्ट देना, पीड़ा देना, माता पिता का अपमान करना। तो बचपन में तो लोग दुख समझते हैं कि ठीक है बच्चा है अभी, थोड़ा सीखेगा आगे जाकर भी, तो शरारत कर रहा है, लेकिन ये कम नहीं हुआ। युवावस्था में हो गए तो उसका शरारत, उसका करतूते बढ़ गए, पाप कर्म बढ़ गए उसके, और उसने विवाह किया, तो विवाह किया तो उसकी पत्नी भी वैसे ही निकली, पत्नी के पीछे इतना पागल हो गया कि अपने माता पिता का और तिरस्कार करने लगा, उनको खाना नहीं देना, वो बूढ़े होने लगे थे, अभी ये जवान हो गए तो वो बूढ़े हो गए, तो माता पिता का सब धन छीन लिया उसने, उनको भोजन देना भी बंद कर दिया, उनसे घर के झाड़ू पोछा ऐसे काम करवाने लगा, पत्नी भी उनको चिल्लाने लगी, उन पर रोब जमाने लगी। तो एक दिन जानुदेव मुक्ताबाई जो थी, उनके माता पिता बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि यहाँ रहकर इतना अपमान सहन करने के बदले में, इतनी पीड़ा सहन करने के बदले में, मतलब झाड़ू पोछा करने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जो मानहानि मानापमान जो हो रहा था ना, उसकी वजह से वो इतने पीड़ित हो गए कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, अभी चले जाएंगे हम लोग। तो उस समय काशी की यात्रा का मौसम था, सब लोग काशी की यात्रा में जा रहे थे, तो ये लोग घर छोड़ के चले गए और काशी की ओर पैदल जाने लगे। उतने में पता नहीं क्यों काशी का जाने का, अभी देखो सब लोग पंडरपुर जा रहे हैं, तो सब लोग पूछ रहे कैसे जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन है, क्या है, कौन क्या इंतजाम है वहाँ पर, थोड़ा सा एक माहौल बनता है ना। तो जो नहीं जाना चाहते थे पहले, वो भी जाना का दिल बनाते हैं कि चलो हम भी जाते हैं, जाके आते दो दिन के लिए। वैसे खबर आई तो पुंडलिक और उसकी पत्नी दोनों के मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम लोग भी काशी जाके दर्शन करके आए। तो वो घोड़ा गाड़ी पे अपने पत्नी को बिठा कर जा रहे हैं काशी के लिए। वे घोड़ा गाड़ी फास्ट चलते ना, पैदल बहुत आस्ते आस्ते जाते हैं। तो ये एक जगह पर जब पहुंचते हैं तो अपने माता पिता को बहुत मुश्किल से चलते हुए भी देखते हैं, लेकिन दुर्लक्ष करके आगे चले जाते हैं। इतना देखो व्यवहार कैसे था उनका। बीच में एक जगह आई, कुक्कुट स्वामी का आश्रम आया, और वहां पर उन्होंने सोचा कि रात का निवास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रात का कमरा लिया, वहां पर निवास किया। तो अचानक उसको बीच में रात को जाग आई उस आश्रम में, कुक्कुट स्वामी के आश्रम में। तो क्या देखते हैं कि तीन देवियां जो निस्तेज हैं, वैसे बहुत निस्तेज हैं, और लेकिन मुकुट पहन के, बहुत अलंकार पहन के, सब लग रहा है कि देवियां हैं कोई स्वर्ग लोकों की, आती है आश्रम में झाड़ू पोछा लेती है, बाल्टी लेती है और सब आश्रम साफ करने लगती है बीच रात में। और जब साफ करने लगती है, जैसे साफ कर रही है वैसे वो उनका तेज वापस आने लगता है, उतने ही गति से उनका तेज दोबारा लौट के आता है। और जब आश्रम स्वच्छ हो जाता है तो पूरे तेजमान हो जाते हैं, इतना तेजमान कि रात के समय पे पूरा आश्रम में प्रकाश हो जाता है। तो इसको आश्चर्य होता है पुंडलिक को, वो पूछते महादेवी आप कौन है? तो कहते हम गंगा यमुना सरस्वती हैं। अच्छा, प्रणाम करते हो। वो कहते ये चमत्कार क्या है आपका? वो कहते साल भर जब लोग हम लोग रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे पापी लोग आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, तो हम लोग अपना तेज खो बैठते हैं, निस्तेज हो जाते हैं और हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं। और कुक्कुट स्वामी इतने परम पावन संत हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, ये पवित्र है, सदाचारी है, सद्गुणी है, सद्विवेकी है, तपस्वी है, गरीबों की सेवा करने वाले है और विशेष करके माता पिता की सेवा करने वाले हैं। संन्यास्त होने पर भी माता पिता वैष्णवों की सेवा करते हैं, सत्य अहिंसा तपश्चर्य ब्रह्मचर्य और गुरु महाराज की सेवा, इसमें निपुण है ये। ऐसे परम संत का दर्शन करना ही परम भाग्य की बात है। उतने में वो कुक्कुट स्वामी वहां पर आ जाते हैं, उनको देखते हैं पुंडलिक को, दुर्लक्ष करके चले जाते हैं। उनको आश्चर्य होता है इतने महान संत आए, बात करेंगे तो बात ही नहीं करते, चले जाते हो। तो ये देवियों को पूछते कि ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि आप माता पिता के अपराधी हो, माता पिता की सेवा करना दूर ही रह गया लेकिन माता पिता का प्रचंड अपमान किया है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके भविष्य में आपका कल्याण होने के बहुत लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बेहतर यह है कि आप यहीं से घर चले जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। आपका बड़ा भाग्य है कि आपको इस जन्म में इतना पाप करने के बाद भी कुक्कुट स्वामी का दर्शन हुआ है और हमारा भी दर्शन हुआ है, क्योंकि खाली नहीं जाएगा, आपके जीवन में कुक्कुट स्वामी का दर्शन करने के बाद कल्याण होगा। तो वो काशी जाने की यात्रा का प्लान कैंसिल करते हैं और दोबारा, उसकी पत्नी भी सुन रही है सब कुछ, पत्नी का भी बहुत बड़ा बोध होता है, उपरती होती है और फिर वो वापस चलने लगते हैं। तो जब घोड़ा गाड़ी से वापस जा रहे हैं तो धीरे धीरे चलने वाले माता पिता भी दर्शन कर मिलते हैं उनको, तो उनको वो गाड़ी में बिठाते हैं और घर लेके आते हैं। और उसके बाद में पुंडलिक गुरुजी की मतलब माता पिता की सेवा करते हैं और फिर सदाचारी बनते हैं, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, विशेष करके मातृपितृ सेवा करते हैं। शुचि पावित्र्य औदार्य कोमल व्यवहार मृदुलता परोपकार सत्य, इसका अंगीकार करते हैं और क्रोध और लोभ और दुष्टता का त्याग करते हैं। तो समझना जरूरी है कि संत जो है ना, ऐसे कहते शास्त्र में कि संत के पुराने जीवन का चर्चा नहीं करना चाहिए। ऋषि का कुल, नदी का मूल, इसका खोज नहीं करना चाहिए कभी, और पुरुष का पगार, इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र में लिखा है। नदी का मूल, ऋषि का कुल और एक चीज है मुझे याद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बाई का बाई सा वय, बराबर, ये तीसरी की चीज है, स्त्री की उम्र, नदी का मूल, ऋषि का कुल और आदमी का इनकम। कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पूछताछ नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर चर्चा क्यों किया, उसका कारण यह है कि इतना पतित व्यक्ति होने पर भी वैष्णव सेवा करने से संत बन सकता है, इसलिए बता रहे। बहुत लोगों का इतिहास ऐसा है संतों का, जैसे हमारे वाल्मीकि मुनि हैं, वो क्या थे, मृगरारी जो शिकारी थे, वो पहले क्या थे, ऐसे बहुत सारे। लेकिन संत का दर्शन होने से राक्षस का रूपांतर भी वैष्णव में, भक्त में हो सकता है। ये पॉइंट बताने के लिए सब बताया, उनके दुर्गुणों का गुणगान करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझना यह है कि संत का दर्शन जो है वो बहुत परम पवित्र होता है। संत का दर्शन ये मनुष्य जीवन में सर्वोच्च दुर्लभ प्राप्ति है, इससे बड़ी दुर्लभ प्राप्ति मनुष्य जीवन में कोई नहीं है। भगवान का दर्शन भी नहीं है दुर्लभ प्राप्ति, सर्वोत्तम दुर्लभ प्राप्ति में संत दर्शन आता है, क्योंकि संत दर्शन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और संत दर्शन के बिना भगवान का दर्शन भी हो गया तो आप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन क्या देख रहे हैं आप। लेकिन संत का दर्शन होगा तो वो आपके हृदय को पवित्र करेगा, भगवान की अनुभूति देगा, भगवान के विषय में ज्ञान देगा। उसके बाद में जब उनकी कृपा से भगवत दर्शन होगा तो फिर आपको भगवत दर्शन का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह भी कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान साथ में मिलेंगे तो दंडवत किसको करेंगे, पहले गुरु को करेंगे, क्योंकि इन्हीं की कृपा से वे प्राप्त हो गए हैं। ये नहीं होते, वो प्राप्त होते तो भी कुछ मतलब नहीं होता। अगर हमारे बीच में अभी ग्रीस देश के प्रधानमंत्री बैठकर कथा सुन रहे हैं, समझो ये कथा में बैठे हुए, और आपको पता नहीं कौन है, आपको लगा होगा कि बड़ा आदमी आया होगा घूमने के लिए इधर, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको उनकी पहचान करेगा कि ग्रीस देश का प्रधानमंत्री है, तो सब लोग मुड़के उनको देखेंगे और उनको विश करने के लिए जाएंगे। तो वो ग्रीस का प्रधानमंत्री है ये गौरव सुनाने के लिए आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो बताएगा कि ये ग्रीस का प्रधानमंत्री। उसी तरह से भगवान कंस के सामने भी आए थे, रावण के सामने भी आए थे, लेकिन जब तक हमारी चेतना संत के दर्शन से, संत के उपदेश से, संत की सेवा से शुद्ध नहीं होता है, हमारा हृदय, हमारी चेतना शुद्ध नहीं होती है, तब तक भगवान भी आएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये उसके पर पूर्ण जन्म का संचित था। कौन था पुंडलिक पूर्व जन्म में, किसी को बताएं? ये राजा मुचकुंद थे, वो कथा में बाद में बताता हूं। तो पूर्व जन्म के संचित से इनको संत का दर्शन हुआ, और संत का दर्शन होने से जीवन का पूर्ण आमूलाग्र परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन होने के बाद में वो इतने रथ हो गए कि उन्हें खुद का भी होश नहीं रहा। उनके माता पिता परम वैष्णव थे, उनकी सेवा करना आरंभ किया, दिन रात उनकी सेवा में रत रहा वो, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनके चरण दबाना, उनकी सेवा करना, उनको स्नान कराना, उनके दवाई करना, उनके हर प्रकार का इलाज करना, उनकी सेवा करना, उनको सुख देना, उनको आत्म सुख देना, हृदय से आनंद देना, ऐसा कार्य किया उन्होंने। बहुत लोग सोचते हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, देखो पुंडलिक ने किया, माता पिता की सेवा किया, लेकिन इसका जो मतितार्थ है, गहरा सार लोग नहीं जानते हैं। संतों की कृपा से ये पता चलता है कि केवल माता पिता की सेवा करने से भगवान दर्शन नहीं हुआ। उनके माता पिता भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे, इसलिए भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए माता पिता की सेवा सबको करनी चाहिए। एक वैष्णव खुद होने के नाते माता पिता अगर शराबी भी होंगे तो भी उनकी सेवा वैष्णव को करनी चाहिए, लेकिन दर्शन भगवान का हुआ क्योंकि वो माता पिता भगवान के परम भक्त थे। ये विशेष बात सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब माता पिता उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं, खुद तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, वो गलत काम करते हैं, बोलते देखो कैसा भक्त है, हरे कृष्णा करता है, हमारी सेवा नहीं करता है, देखो देखो पंडरपुर जाता है, सेवा करता है, वहां पर क्या बताया है। माता पिता की सेवा करने के बाद भगवान ने पुंडलिक को दर्शन दिया, तो ये हमारा वैष्णव भक्त जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। तो माता पिताओं को सबको पता होना चाहिए कि उनको खुद पहले भक्त बनना चाहिए, तब उनकी सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये हमको जानना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र में गलतफहमी है। सब लोगों को भगवान का भक्त बनना चाहिए, माता पिताओं को भी, बच्चों को भी, और तब जाकर भगवत प्राप्ति का कोई संभावना है। तो फिर ये इतने रथ हो गए थे, उनका हृदय जो है ना वो माता पिता वैष्णवों के शुद्ध भक्त करने से, भक्ति करने से, सेवा करने से परम पवित्र हो गया था, परम पवित्र, और कोई अन्य अभिलाषा उसके मन में बची ही नहीं थी। इतना आनंद को प्राप्त कर रहे थे, माता पिता को सुख दे रहे थे, स्वयं परम आनंद थे, सत्य के रास्ते पे चल रहे थे, क्रोध लोभ द्वेष सब त्याग दिया था उन्होंने, सब चराचर के प्रति मित्री भाव उनके मन में था, सत्य परोपकार में वो व्यस्त थे, स्वाध्याय करने में व्यस्त थे। तो भगवान रुक्मिणी को मनाने के भाव से उसके घर पे आए, और ये भी इनका जन्म भी इधर का ही है। जानुदेव मुक्ता देवी ने पुंडलिक को जन्म इसी पंडरपुर क्षेत्र में दिया था, तब इसका नाम पंडरपुर क्षेत्र नहीं था, तब इसका नाम लोदंड तीर्थ दिंडीरव वन, मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में सुरक्षित ऐसा पवित्र स्थान था, वो तपस्थली थी वो। तो भगवान जब आए तो उनकी छोटी कुटिया में आए भगवान। वे देखो, भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए इतने दूर से आते हैं, भगवान को खुद दर्शन करने जाएंगे कितना मुश्किल है, पंडरपुर में भी मुश्किल है ना, यहां पर भी पृथ्वी तल पे भी दर्शन करना मुश्किल है, वो तो मूर्ति स्वरूप यहां पर साक्षात खड़े हैं। लेकिन वैसे हम लोग प्रयास करेंगे कि वैकुंठ वाले भगवान का दर्शन करें, कितना मुश्किल है, कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आपको देखें तो उनके लिए कुछ मुश्किल है क्या? वो किसी ना किसी बहाने झट से आ सकते हैं आपको दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आपका और आपको दर्शन देने के लिए। यही प्रमाण है हमारे प्रभुपाद जी के, जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने भी यही कहा है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाएं। और यही प्रमाण है पुंडलिक की जीवन का, और यही इस धाम का एक सार भाव है, सार चेतना इस धाम की यही है कि ऐसी सेवा करो, ऐसी चेतना बनाओ कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए, जो बहुत ही आसान है भगवान के लिए भी आपके लिए भी। तब ये आए, तभी रात का समय था, संध्या समय था, भगवान जब आधे पधारे घर में, तो ये माता पिता के चरण सेवा कर रहे थे। माता पिता बड़े वृद्ध अवस्था में थे, विश्राम करने जा रहे थे, तो चरण सेवा पूरी नहीं हुई थी। अचानक रूम में ना थोड़ा सा वो दीपक होता है ना, मिनमिनता दीवा, वैसा चल रहा था, एकदम अचानक दिव्य प्रकाश आया, तो इन्हें मुड़के देखा तो भगवान पीछे खड़े, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो दिव्य प्रकाश सब जगह आता है। और क्या आता है भगवान आने के बाद में, एनीथिंग एल्स? अगर आप अंधे भी हो समझो, दिखाई नहीं पड़ते आपको, तो भगवान का अस्तित्व कैसे जानेंगे आप? सुगंध, भगवान के दिव्य शरीर से दिव्य सुगंध आता है। राधा रानी का जन्म हुआ था तो भी उन्होंने आंखें बंद करके रखी थी ना, तो कहते जब जैसे रंगने वाले भगवान उनके वो पलने वाले रूम में आए, वहीं से उन्होंने आंखें खोल दिया, क्योंकि उनके नाक में से सबसे पहले भगवान का सुगंध जो है प्रवेश किया। तो राधा रानी ने भगवान का तरफ से आने वाले सुगंध का स्पर्श और अनुभव करते ही अपने नेत्र खोल दिए, और फिर जाकर भगवान ने उनको अपने हाथ से स्पर्श किया है, फिर जाकर उनके खुले हुए नेत्रों में राधा रानी को भगवान के दर्शन हुए। तो ये सुगंध और ये प्रकाश से प्रभावित हो गए पुंडलिक। अभी हम और आप होते तुरंत वो सेवा छोड़ के भगवान के पीछे मुड़ जाते, क्योंकि स्वाभाविक है ना, आत्मा का जो परमात्मा कौन है, पिता है ना उसका, जिसके अंश है हम परमात्मा के, उससे जब जीव की मुलाकात होती है तो परम आनंद हो ही जाता है, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन से भी ऊपर एक चीज है, वो है वैष्णवों की सेवा, वो भगवान का दर्शन करने से भी अधिक आनंद देती है, वो है भक्तों की सेवा। ये सत्य है, इसीलिए भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं फिर भी पुंडलिक उनको बता सके कि भगवान आप रुको, प्लीज वेट, मेरी सेवा अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसा ईंट फेंक दिया और कहा कि आप कृपा करके यहां पर रुक जाइए। वो प्रसंग में जब जीवन जीव जीव को भगवान का दर्शन होता है जीवन में, पहले ऐसा नहीं कि रोज आ रहे हैं वो, चलो 10 बार देख लिया, अभी 11 बार खड़े हो जाओ, बाद में देखेंगे आपको, ऐसा नहीं है। जीवन में पहली बार दर्शन दे रहे हैं फिर भी उनके अंदर ये आध्यात्मिक चेतना ऐसी है, दिव्य चेतना, कि वो बता पा रहे हैं उनको कि भगवान आप रुको, मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं। और भगवान भी रुक गए। अगर भगवान को उनके द्वारा की गई माता पिता की सेवा महत्वपूर्ण नहीं होती समझो, भगवान क्या बोलते, ठीक है टाइम नहीं तो चले चले जाएंगे हम, आपको समय नहीं तो ठीक है कोई बात। लेकिन भगवान की दृष्टि से भी वो जो करने जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं रुको, वो चीज भगवान के लिए महत्वपूर्ण थी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉर्ड ऑल्सो, इसलिए भगवान रुके रहे। देखिए हर चीज में अर्थ है उसके, भगवान रुके रहे क्यों? क्योंकि भगवान को वैष्णव सेवा खुद की सेवा से अधिक प्रिय है, मोर डियर देन हिज सेवा, भगवत भक्त सेवा। और भगवान रुके रहे, उनका प्रकाश फैला रहा। फिर जब माता पिता सो गए तो फिर ये मुड़े हैं और मुड़कर फिर भगवान का दर्शन किया है, तब तक दर्शन नहीं किया है। इतना बड़ा मोह है ना, ये भगवान सामने खड़े उनका दर्शन करना, कितनी मोह की बात है, कितना अट्रैक्शन है, वो टाल नहीं सकते कोई व्यक्ति। भगवान जैसे व्यक्ति सामने आ गए तो कैसे कह सकते कि बाद में देखेंगे आपको। लेकिन ये मोह भी उन्होंने वैष्णव सेवा के बल से, दिव्य बल से चाक दिया, और फिर वैष्णव सेवा पूर्ण किया और पूरी तरह से भगवान का दर्शन का पूर्ण लाभ लेने के लिए योग्य हो गए वो। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं बरसाना में जब कैंप करते हम लोग, कि यहां पर जब आप नेत्रों की सेवा कर रहे हैं कैंप में, वारकरियों की सेवा कर रहे हैं, तो स्वयं विट्ठल भगवान आपको वारकरियों के रूप में सेवा दे रहे हैं, उन्हीं के रूप में आपका दर्शन कर रहे हैं, आपको भी दर्शन दे रहे हैं। जब वो आपको देख के हंसेंगे ना, प्रेम से, समाधान से, स्मित हास्य करेंगे ना, तो साक्षात भगवान आपको देखकर स्मित हास्य कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ में हमको अपने सेवा स्थान में बैठकर सेवा करना चाहिए, वहीं पर आकर भगवान आपको दर्शन देंगे, और नहीं भी देंगे तो भगवान के अस्तित्व का लाभ आपको वहीं मिलेगा जहां पर सेवा हो रही है। तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कान में मकर कुंड पहने हुए हैं, सुंदर मुकुट पहने हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, कौस्तुभ मणि है, इतना सुंदर दर्शन कि वो गदगद हो गए, आंखों से अश्रु आए उनके, बार बार दंडवत प्रणाम किया, कहते बार बार बेहोश हो गए, बार बार होश में आए, फिर माता पिता भी जग गए, उनको भी दर्शन हो गया। देखो पुंडलिक के वैष्णव सेवा की वजह से उनके माता पिता को भगवान का दर्शन हुआ। ये भी कथाएं बहुत सारी होती है, भक्तों के सहारे रहने से योग्यता ना होने पर भी भगवान का दर्शन हो जाता है। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है, पूरे मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ है भक्तों का संग, सर्वश्रेष्ठ। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, इन्हीं के भक्तों के संग से, भक्तों की सेवा से, भक्तों की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर उन्होंने बहुत भगवान का वर्णन किया है, पूरा स्कंद पुराण में पांडुरंग क्षेत्र महात्म्य में पुंडलिक ने भगवान की कीवी स्तुति का सुंदर वर्णन है। वो भगवान का गौरव करते जा रहे हैं, भगवान का गौरव करते जा, उस गौरव में सबसे प्रधान गौरव क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने रूप का भगवान का वर्णन किया कि आपके नेत्र इतने कमल दल के समान है, आपके फूल इतने सुगंधी है, आपके फूलों का खुशबू लेके ही आत्मशुद्धि हो जाती है, आपके मकर कुंडल कितने आकर्षक हैं, आपका पीताम्बर हजारों सूर्यों से भी प्रकाशित है, तेज पुंज है, आपकी वैजयंती माला, आपका कौस्तुभ मणि आपके शरीर पे शोभा पा रहा है। और जो बाद में वर्णन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं मुझ जैसे पतित पापी जीव को दर्शन करने के लिए आप अपने धाम से लौट कर यहां पर आए, और मुझे लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, फिर भी आप इतने दयालु हो, इतने करुणा वाले हो, इतने वात्सल्यमय भगवान हो, अपने भक्त पर इतना प्रेम करते हो, मैं भक्त भी नहीं हूं फिर भी इतना प्रेम करते हो कि अपना घर छोड़कर आप मेरे घर में आए हो। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका यह दर्शन मैं केवल अकेला कर रहा हूं और माता पिता कर रहे हैं। आप कितने दयालु हो, कितने वात्सल्यमय हो, कितने करुणामय हो, ये केवल हमको ही पता चल रहा है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि आपका यह स्वरूप जो है, जो आप कमर में हाथ रखकर खड़े हो, ये आपका स्वरूप जो है, ये इसी स्वरूप में सबको प्राप्त हो और सब लोग देखें कि देखो आप कितने दयालु हैं। भाव में बहुत क्या कहते हैं उसको, गहराई है। ऐसा नहीं है कि मैं कितना महान था और महान हूं, मेरे लिए आप आए ये लोगों को पता होना चाहिए, ये भाव नहीं है उनका। हमको लगा क्या, देखो उन्होंने पुंडलिक ने भगवान को कैसे बोला कि मेरा ग्रेटनेस, मेरा महात्म्य जो है लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आप यहीं खड़े हो जाओ। नहीं, आप जिस वात्सल्य से आए हैं वो वात्सल्य मूर्ति, उसका दर्शन सब लोगों को होना चाहिए। तो भगवान ना पहले से कमर पे हाथ रखे खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए, आए थे और लौट के नहीं गए। सभी अवतार आते हैं और जाते हैं अपने समय का अवतार काल समाप्त होने पर, लेकिन भगवान लौटे नहीं, वहीं पर खड़े हो गए और कालांतर में वो मूर्ति विग्रह स्वरूप बन गए, चंद्रभागा के किनारे रह गए। तो ये पूर्व जन्म में देवताओं के तरफ से युद्ध करने वाले मनुष्य, पृथ्वी के मनुष्य थे, राजा थे, राजा मुचुकुंद, और इन्होंने देवताओं के तरफ से राक्षसों के साथ में बहुत समय तक युद्ध किया, इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया, कई युगों तक युद्ध चलता रहा, कई दैवीय वर्षों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध में देवता लोग जीत गए और सबसे बड़ा काम इसके वीरता का था, इसने वीर जितनी वीरता दिखाई, शौर्य दिखाया, उसके वजह से देवताओं का विजय हुआ। तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मुचुकुंद आपको क्या वरदान चाहिए। तो बेचारा इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था, उसने कुछ सोचा नहीं, बोला मुझे सोना है बस, ऐसा सोना है कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए मुझे, कोई आके निद्रा में व्यवधान नहीं करना चाहिए, और कोई आया ही निद्रा में व्यवधान करने के लिए तो जैसे मेरी नींद से आंख खुलेगी, मेरी आंख का मतलब मैं जब उसको देखूंगा वो जलकर भस्म होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कितना थका रहेगा वो। ऐसा वरदान मांग लिया कि किसी को उठाने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। लेकिन उस समय, अभी उसके बाद इसकी आधी नींद पूरी हो गई, तब उसको भी लगता होगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उठने का ही संभावना नहीं है, कोई उठाएगा ही नहीं मुझे, उठने की व्यवस्था ही करके रखी नहीं मैंने, इतना थका था मैं। निद्रा ऐसे ही होती, जब निद्रा आती है ना तो सब कुछ आदमी सत्य असत्य क्या बोलते हैं उसको सत सत सद विवेक अविवेक अविवेक सब भूल जाते, सार असार सब भूल जाते व्यक्ति। कोई भी वेग जब आता है ना, निद्रा का हो, लघु शंका का हो, बड़ी शंका का हो, और क्रोध का हो, और भूख का वेग हो, या छींक का वेग हो, कोई रोक नहीं सकता है उसको उल्टी का वेग हो, दस्त का वेग हो, बड़े बड़े आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब ये वेग आते हैं और ये वेग कब आते हैं, जब शरीर धारण करते हैं हम लोग, तो शरीर के साथ साथ ये पैकेज है पूरा ऐसा वेगों का, और ये वेगों से ही हम लोग सब त्रस्त हो जाते हैं। और ये वेगों के प्रभाव से कभी कभी लोभ का वेग आता है, कभी कभी काम वासना का वेग आता है, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। जब काम का वेग होता है ना, तो ना आदमी शेर से डरता है, ना उसको लज्जा आती है। ये सारे वेगों से हम लोग पीड़ित हैं, क्योंकि हमने शरीर धारण किया है। भगवान को छोड़कर, भगवान को भूलकर, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, हाँ, नियंत्रक बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए हमने यहाँ पर शरीर धारण किया है। और ये शरीर के साथ साथ जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, इतने सारे वेग, वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, क्रोध वेगम, उदरोपस्थ वेगम, इतने सारे वेगों से हम परेशान हैं। इससे मुक्त होना है हमको, इसलिए हम धाम में आते हैं। तो ये निद्रा वेग से परेशान होकर ऐसा वरदान मांगा, बहुत सारा वरदान मांग सकता था कि मेरी थकान दूर हो जाए, तत्काल मुझे ऊर्जा प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसे मामला में मुमकिन था, और देवताओं को वरदान देना मुमकिन था। लेकिन क्या बोला वो, उस निद्रा वेग के वश में होकर क्या बोला, सोना है मुझे। तो सो गया वो सत्ययुग में। वो सत्ययुग का कितना साल होते हैं पता है आपको, 17,96,000 साल होते। उसके बाद में त्रेता युग बिता, 12,64,000 साल होते उसके अंदर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं गलती करता होगा, हाँ 17,28,000 साल होते हैं सत्ययुग के, फिर 12,96,000 होते हैं त्रेता युग के, फिर 8,64,000 साल होते हैं द्वापर युग के। तो द्वापर के भी थोड़ा सा में बाकी है, 100-125 साल। इतने लाखों साल सो रहा था वो। लेकिन भगवान है ना, आपने अगर कभी सेवा किया भगवान का, तो आप शायद भूल जाएंगे कभी कब सेवा किया था, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। भगवान में एक बहुत सुंदर गुण है, वो कभी भी किसी भी अच्छी चीज़ को नहीं भूलते हैं, उनकी स्मृति अगाध है। और खास करके वो प्रेम से वो भगवान हमारे भक्तों, मतलब उनके भक्तों के द्वारा जो सेवा की गई ना, वो कभी भूलते नहीं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अच्छी चेतना से सेवा करो। आप भूल जाएंगे कि जून के महीने में 2018 में आपने पंडरपुर में सेवा किया था, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे। वो सारे आपने प्रामाणिक चेतना से की हुई सेवा का हिसाब किताब हमारे मृत्यु के समय देंगे आपको, सबका हिसाब रखते हैं वो। इसलिए सेवा में जब आए हैं, तो सेवा का समय अच्छी चेतना के साथ में सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंट अक्षय खाता है, उसमें भगवान हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरे भक्त ने क्या सेवा किया है। और ऐन मौके पर जब जीव मृत्यु के समय खड़ा होता है, उस समय सारी सेवा का लाभ भगवान देते हैं अपने दर्शन से और अपनी कृपा से। तो ये सोया हुआ है, अभी किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही, देवता भी उनसे बहुत ऋणी है कि बेचारा कितना सेवा किया हमारा उसने। भले देवताओं ने कई बार युद्ध किया, कई बार हारे, कई बार जीते, लेकिन इस युद्ध में मुचुकुंद की वजह से जीते थे हम लोग, उस समय के लिए सुकून तो हुआ था, सुख प्राप्त हुआ था, लेकिन देवताओं को हिम्मत नहीं हो रही है। जगह नहीं जाएंगे तो अपने को देखेगा तो आप खुद ही जल के भस्म हो जाएंगे। देवता लोग इतने निस्वार्थ नहीं होते हैं, चलो मैं जलकर मस्त हो जाऊंगा लेकिन सोते हुए को जगाऊंगा, मैं मेरी बलि दे दूंगा, मैं इतना ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं कि मैं जाऊंगा, मेरे बलि देने के ऊपर उसको जगाऊंगा, उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कोई सोचता नहीं है। बोले ठीक है, प्रेम तो हमारा उसके ऊपर है, कृतज्ञ भी है, लेकिन मरना कौन चाहता है लेकिन ये सबने अपना स्वार्थ का विचार किया, तो भी भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। भगवान दिव्य योजना बनाते। काल यावन नामक राक्षस ने द्वारका बनाने पर, द्वारका पर आक्रमण किया, उस समय जरासंधनी में आक्रमण किया, और उनके दोनों के आक्रमण के भय से भगवान ने तुरंत द्वारका बना लिया। तो ये लोग मथुरा से निकले थे, मथुरा में कोई नहीं मिला, तो द्वारका में आक्रमण करने निकले, तो भगवान ने सभी मथुरा वासियों को द्वारका में सेटल किया, और द्वारका के मेन गेट से भगवान अकेले बाहर आए। तो ये बाहर खड़ा है काल यावन आक्रमण करने के लिए, सावधान करके चेतावनी दे रहा है, और भगवान आराम से चल रहे हैं, एकदम आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। अभी समझो अभी आप, और यहाँ कोई बंदूक लेके आएगा, मशीन गन AK-47, सावधान, तो हम लोग थोड़े भागेंगे ना इधर उधर अरे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी आ गए, भागो सब लोग सेवा छोड़ के। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही पूरी तल रहे थे और दूसरे महायुद्ध का बॉम्ब गिर रहा था, सब लोग भाग रहे थे। बोले महाराज जी आप भी भागो भागो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो बॉम्ब गिर यहां पर गिरेगा तो भी मरूंगा, यहां से भागूंगा तो बाहर भी बॉम्ब गिर सकता है, मतलब यहां से भागने से लाभ क्या है, उससे अच्छा सेवा में हूं, भगवान के लिए पूरी तल रहा हूं भोग लगाने के लिए, वो भगवान का नाम लेकर पूरी तलते रहूं, बॉम्ब गिरेगा तो भी भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन सेवा छोड़ के भागूंगा और बॉम्ब गिरेगा तो पता नहीं क्या होगा। है ना, भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, उनको ना भक्ति और सेवा का सार पता होता है, इसलिए ना वो ऐसे क्या कहते डगमगाते नहीं कभी। वो हमारे भूकंप एक बार हुआ था 2001 में, तो मैं ना ऐसे कथा करते बैठा था, ऐसे बिल्डिंग का गेट था, वो बिल्डिंग में अंदर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि आफ्टर शॉक ऐसे बार बार भूकंप आते थे बहुत जोरदार, ना ऐसे ऐसे जमीन हिलती थी, ऐसे वो दीवार में था क्रैक, वो बढ़ता था एक एक क्रैक के भूकंप के साथ, कोई स्नान कर रहा है देखता अरे इतना क्रैक था अभी 2 मिलीमीटर का 4 मिलीमीटर हो गया है। सब लोग ऐसे ऐसे बाहर लोग बैठे हैं और यहाँ पर सीढ़ी पर मैं बैठ के कथा कर रहा हूँ, उतने में ना बहुत जोरदार झटका आया भूकंप का, तो सब कथा बैठने वाले सुनने वाले लोग उठकर भाग गए, सब लोग भाग गए, लेकिन मैं वही बैठा रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी मरना ही है तो इधर भी मर सकता हूँ, बाहर भागेगा तो उधर भी मर सकता हूँ, उल्टा कथा करते रहना अच्छा है। तो मैं उधर बोलते रह गया अकेला अपना माइक्रोफोन लेके, कुछ देर बाद भूकंप थम गया, लोग वापस आ गए, कथा कंटिन्यू हो गई। ये मेरा बहुत ऐसा क्या कहते हैं उसको सनसनीखेज अनुभव है जीवन का, और मुझे अभी भी आनंद है कि मैं भागा नहीं। आज भी कथा में बोल सकता हूं 18 साल के बाद कि मैं भागा नहीं। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि सेवा में रत रहना वो स्थिति सबसे सुरक्षित स्थिति है, प्लीज अंडरस्टैंड, सेवा छोड़कर भागना ये असुरक्षित होने का प्लान है, इसलिए सेवा में रहिए, निश्चिंत रहिए, आप विश्वास के साथ रहिए कि सेवा में रहूंगा और भागूंगा नहीं, और मर जाऊंगा तो सेवा में हूं, इसलिए भगवान को ना मजबूर होकर आपको भगवत धाम ले जाना पड़ेगा प्रेम से। इसलिए भगवान का भक्त अभय निर्भय होता है। तो भगवान ने क्या योजना किया, आराम से चलते रहे वो अपना द्वेष में या क्रोध में या द्वेष में आकर उनको चैलेंज कर रहा है, ए डरपो कहां जा रहे हो, गाय चराते हो, तुमको कोई शत्रु तेज नहीं है तुम्हारे अंदर, क्षत्रिय नहीं है, ऐसे बहाने करते राजा बनने का, तुम तो गवार हो, हाँ क्या गाय चराने वाले हो, ऐसे निंदा कर रहा है ताकि और उकसा के भगवान उसको शत्रु उठाए, लेकिन भगवान उसके सामने से उसको पास करके चले जाते हैं, ऐसे पहले ऐसे आ रहे ना सामने से गाली दे रहा है, फिर साइड में जाके साइड से निकल जाती है, टर्न करता है उनके पीछे पीछे जाता है, और ये चल के जा रहे उनको आश्चर्य हो रहा है, ऐसे कैसे इतने बड़े वीर हैं ये, इतने राक्षसों का जरासंध का 16 बार परास्त कर चुके हैं, 17वीं बार भी आने वाला है वो, इतने वीर है ये, बोला अच्छा मौका है, डर गए तो डरने वाले को मारना आसान होता है बहुत, लेकिन क्षत्रियों का नियम होता है ना कि बिना शस्त्र चलाए वो हमला नहीं कर सकते हैं, कैसे भी करके इसको हमला करने का उकसाया उसके लिए तो फिर वो शायद शस्त्र उठा सकता है, तो शस्त्र का उठाते हैं, चलते जा रहे हैं। तो भगवान ने एक वैराग्य का दर्शन किया, इसमें दर्शन दिया सबको कि भगवान का वैराग्य कितना सर्वश्रेष्ठ है, कि भगवान किस चीज से आसक्त नहीं, अपने मान से, अपने स्तुति से, अपने प्रार्थना से लोग गौरव कर रहे हैं, किससे भगवान आसक्त नहीं है, और एक यक्कश्चित राक्षस जो वध करने योग्य है उसके द्वारा निंदा हो रही है, उसको तो तुरंत दंड देना चाहिए, फिर भी भगवान ना अपने मान और सम्मान के और गौरव के सामने अपने भक्त के कल्याण को प्राधान्य दे रहे हैं, ही इज गिविंग प्रायोरिटी टू द वेलफेयर और कल्याण ऑफ हिज डिवोटी। जा रहे हैं, फिर इसको भी थोड़ा सा लगता है कि अरे तो पैदल चल रहे शत्रु हमारा, और मैं रथ में चलकर उसको निंदा कर रहा हूँ, तो वो भी नीचे उतर जाते हैं, और सेना को बोलते हैं सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, मैं जाके देखता हूँ इसको, तो भगवान पैदल जा रहे हैं, इसके पैदल पैदल जा रहे हैं और निंदा करते 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 जा रहे हैं, अचानक भगवान भागने लगते हैं, तो ये भी भागने लगता है, तो भाग भाग के भगवान जंगल में लेके जाते हैं उसको, जंगल से लेके पहाड़ में लेके जाते हैं, पहाड़ चढ़ने लगते, ये भी पीछे पहाड़ चढ़ रहे हैं, और अचानक भगवान ना एक गुफा में गायब हो जाते हैं, तो ये ढूंढ रहे इधर उधर, किधर गया, अरे अभी तो था, तो देखता है गुफा में है, शायद गुफा में गया होगा, तो गुफा में प्रवेश करता है तो एक व्यक्ति वहां पर सोया हुआ मिलता है, जिसकी दाढ़ी कई किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके नाखून कई मीटर तक फैले हुए हैं, ऐसे नाखून भी ऐसे बड़े हुए एकदम लंबे, दाढ़ी ऐसे फैल रही है, ऐसा विचित्र रूप में सोया हुआ है। भगवान क्या करते हैं, जब अंदर जाते हैं ना तो अपना वस्त्र उस पर डालते हैं और अंदर चले जाते हैं, गुफा के अंदर जाके छुप जाते हैं। अब एक तरह से डरपोक का काम कर रहे हैं ना, कर रहे कि नहीं? तो ये सोचता है कि ये व्यक्ति केवल ढोंगी नहीं है, जादुई व्यक्ति भी है, क्या कहते हैं उसको, मायावी व्यक्ति भी है। देखो अभी अभी तो अच्छा पीताम्बर पहन के चल रहा था, इतना सांवरे रंग का सुंदर लग रहा था, अभी देखो इतना बुड्ढा दाढ़ी और नाखून बड़ा हुआ आदमी का रूप देके सोने का नाटक कर रहा है। मैं नहीं फंसने वाला, तुम कुछ भी नाटक करोगे थे, मैं बराबर जानता हूं, ऐसा करके लात मार के बोलता है, चलो मरने को तैयार हो जा। तो वो बेचारा मुचुकुंद था, वहां पर सोया हुआ था, वो उसका उद्धार करने के लिए भगवान द्वारका से वहां तक चल के आए। जैसे लात मार के वो जगता है ना तो तुरंत आगे देख थामने देखता है कौन आया जगाने के लिए, उसके आंख से अग्नि निकलती है और काल यावन भस्म होके वहां पर मर जाता है। फिर भगवान डरपोक बनकर अंकर छुपे हुए थे ना, वो बाघ आके दर्शन देते हैं उसका। देखो कितने दयालु भगवान, कितने भक्त वत्सल हैं। हाँ, खुद को डरपोक जैसा कार्य किया खुद ने। अभी जब तक आपको नहीं बताया, आपको नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो निंदा सहन किया शत्रु से, जिसको सहजता से मार सकते थे, और लगातार निंदा होती रही उनकी। ऐसा बीच में गुस्सा आके, एक मार दो क्या उसको, ऐसा नहीं 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 इसको मारूंगा ना तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा। फिर आगे थोड़ा सुना, मारू क्या उसको अभी, नहीं 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 इसको मारूंगा तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा। तो अपने भक्त के ऊपर दया करुणा उद्धार करने की भावना उनके मन में प्रधान है, सबसे प्रधान भक्त की वत्सलता है उनके मन में। खुद को डरपोक साबित करके रणछोड़ नाम पड़ा उनका, अरे भागने वाले, रण से भागने वाले नाम पड़ा उनका, कोई परवाह नहीं उनको, भक्त के कल्याण की परवाह है। इसलिए एक तो दो टू इन वन काम किया ना, टू इन वन, कालियावन का वध तो किया ही उन्होंने, लेकिन मुचुकुंद को जगाया, मुचुकुंद को जगाकर दर्शन दिया, और दर्शन देकर वो बड़ा धन्य हो गया, वो स्तुति करने लगा। और वो भी यही कह रहा है जो पुंडलिक यहाँ पर अपने घर में कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, इतने दूर आप द्वारका से मेरे मुझे मिलने आए, इतने चमत्कारिक रीति से आपने मुझे बचाया, राक्षस को मारकर भी खुद दर्पक बनकर भी मुझे आपने बचाया है, लेकिन आपका ये करुणा वाला रूप जो मैं अकेला देख रहा हूं, मैं चाहता हूं विश्व इसको देखे, विश्व का हर एक जीव देखे इसको, कि कितने वत्सल है आप भक्त वत्सल, कितने करुणा वाले हैं, कितने प्रेम करने वाले हैं भक्तों के ऊपर। भगवान ने कहा डोंट वरी, अगले जीवन में, अगले आपके जन्म में मैं आपको आपका ये वादा पूरा करूंगा। तो वही मुचुकुंद जो है वो पुंडलिक बनकर आए हैं, वही भगवान जो द्वारकाधीश हैं, वही द्वारकाधीश यहां पर आकर कमर में हाथ रख के खड़े हैं। ऐसा है भक्तों का। तो भगवान के भक्त वत्सलता पर विश्वास रखो, और जिस भक्तों जिन भक्तों की सेवा करने के लिए इतने व्याकुल रहते हैं उन पर भी विश्वास रखो कि हमारे लिए नहीं, उनके लिए आ सकते हैं वो, उनके संग में रहेंगे हमारा भी बाय द वे लाभ हो सकता है ना। इसलिए सब लोग भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है, भक्तों की सेवा भगवान को भी वश में लाती है, भगवान को ऐसे डरपोक बनाने के लिए बनने के लिए भी मजबूर कर देती है। ऐसे भक्तों की सेवा करो। और भगवान के लिए भक्त कौन है, जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान का भक्त है, जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो भगवान का भक्त है, जिसके साथ में रहकर आपको जप करने की प्रेरणा होती है वो भगवान का भक्त है। ऐसे भक्तों की सेवा करो आप, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं व्याख्या किया है। तो ऐसे भक्तों की सेवा करो और भगवान को खींचो अपनी ओर, हाँ उसकी ओर भागने का प्रयास मत करो, उनको अपनी ओर खींचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।